Nee. Om Shanti. हम सभी बाबा के घर मधुबन में या कहें अपने ही घर में यहाँ आते हैं। किस लिए आते हैं? अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, कार्य व्यवहार में रहते हैं, सेवा केंद्रों पर आते जाते हैं, फिर भी बाबा के घर की आकर्षण अलग ही होती है और यहाँ आने की हमेशा ही सबकी दिल करती है। क्यों? क्योंकि ये जो बाबा का घर है, ये है साधना करने का, साधना को बढ़ाने का और साधना की चरम सीमा तक पहुंचने का स्थान। यहाँ के वातावरण में आध्यात्मिक वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस सब इतनी भरी हुई है, बाबा की कर्तव्य भूमि है कि यहाँ आते ही सबका ध्यान योग और बुद्धि स्वतः ही बाबा की तरफ खिंच जाती है। तो वर्तमान समय हमारी साधना का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसके लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कोई भी साधना की बात आती है, तपस्या की बात आती है, तो स्वतः ही बुद्धि में एक ऐसी भूमिका तैयार हो जाती है, आध्यात्मिक भूमिका, कि बस ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और हमें कहाँ तक पहुँचना है वो बात बार बार बुद्धि में आती है। तो जब साधना की बात करते हैं तो साधना के साथ साथ तीन बातें और बुद्धि में आनी चाहिए। ये कुल चार बातें हैं। एक है साधक, दूसरा है साध्य, तीसरा है साधना और चौथा है साधन। ये चार बातें जब बुद्धि में स्पष्ट होती हैं तो स्वतः ही हमारी साधना जो है वो आगे बढ़ती जाती है, जीवन प्रकाशित होता जाता है और हमें लगता है कि हाँ, हम अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे एक साधक, साधक कौन है? जब ये बात करते हैं, साधक, साध्य, साधना, साधन आदि आदि, तो साधक कौन? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हम आत्मा, हम सब साधक हैं। और क्योंकि ये शरीर तो निमित्त माध्यम मिला है, लेकिन जो साधना करने वाली है वो है आत्मा। इसीलिए एक बात ये बुद्धि में हो कि मैं आत्मा हूँ, ये तो हम सबकी बुद्धि में है, पहले दिन का ही पाठ है, लेकिन बाबा फिर भी रोज रोज कहते हैं आत्मा का ज्ञान परमात्मा भी बहुत गुह्य है। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं बहुत बिरले ही मुझे जानते हैं। ऐसी आत्मा, खाली ये कह देना मैं आत्मा हूं, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूं, ये तो अच्छा है, मोटा ज्ञान है, लेकिन महीन ज्ञान क्या है इसका? इसकी महीनता में जाने के लिए बाबा ने एक विशेष साधन बताया है। एक तो मुरली का अध्ययन। मुरली केवल एक बार सुन ली, क्लास में आ गए, वो ही काफी नहीं है। हमारा तो पिछले 50-52 वर्ष का ये अनुभव है कि मुरली में बहुत बहुत गुह्यता होती है, एक बार पढ़ने से वो स्पष्ट नहीं होती है। जब तक कम से कम उसे 3-4 बार कम से कम उसे पढ़ा जाए या बहुत गौर से सुना जाए तो बहुत बातों का स्पष्टीकरण होता है। अभी मुरलियां भी बहुत बार रिवाइज हो गई हैं, लेकिन रोज जब मुरली सुनते हैं तो कई बार लगता है अरे ये पॉइंट तो पहली बार ही हम सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय प्रमाण उस पॉइंट की गुह्यता वो बुद्धि में स्पष्ट होती जाती है। समय प्रमाण, बाबा ने तो उस बात को बहुत कह दिया, आज से 45 वर्ष पूर्व साकार बाबा अव्यक्त हुए, उनके द्वारा शिव बाबा ने मुरलियां चलाई 1969 के से पहले की जो भी साकार मुरलियां हैं वो ही रिवाइज हो रही हैं। लेकिन बाबा ने तो उस वक्त बात जो बोली वो उस समय बुद्धि में नहीं बैठी, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि उसको ग्रहण करने के लिए समय प्रमाण बिल्कुल उस स्थिति में नहीं थी। अब वही बात अब जब सुनते हैं तो बुद्धि में एकदम स्पष्ट रीति से बैठ जाती है। इसलिए एक तो ये बात कि मैं साधक आत्मा हूं और उसके लिए मुरली का अध्ययन और उसको पढ़ना सुनना कम से कम 3-4 बार होगा, आप खुद ही अनुभव करेंगे कि अरे पहली बार जब सुनी पढ़ी, दूसरी बार तीसरी बार भी पढ़ेंगे, अरे अभी हमने 2 बार पढ़ भी ली लेकिन ये बात तो हमें अभी ही बुद्धि में आ रही है, जैसे पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि बुद्धि को आदत है, कहीं बैठे यहां है बुद्धि घूम फिर के बहुत जगह से आ जाती है। जो भी बात बुद्धि में होती है, जिधर की तरफ हमारा आकर्षण होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बार बार बुद्धि उधर गई तो इधर मुरली की जो भी पॉइंट चल रही है निमित्त कहने मात्र भले कान के द्वारा सुन रहे हैं लेकिन वो बुद्धि तक नहीं पहुंचती। तो इसीलिए एक बात ये अध्ययन और दूसरा विचार सागर मंथन। जितना हम विचार सागर मंथन करते जाते हैं उतना उतना वो बात बुद्धि में और स्पष्ट होती जाती है। उसका साधन क्या है विचार सागर मंथन करने का? कई कहेंगे मुरली सुनते तो हैं लेकिन मंथन नहीं चलता। तो मंथन चलाने के लिए बाबा ने क्या साधन बताए हैं? बहुत स्पष्ट। क्या साधन बाबा ने कहा है? एक तो चित्रों के सामने जाके बैठ जाओ। जो हमारे मुख्य चित्र है ना, मानो कल्प वृक्ष का चित्र है, कल्प वृक्ष के चित्र के सामने जाके बैठ जाओ, चित्र को देखो, बस नीचे से जड़ से शुरू करो। ओहो, ये सृष्टि रूपी झाड़, इसका तो बीज रूप बाबा है, मैं इसके मुख्य जड़ में बैठी हुई आत्मा हूं, भगवान ने मुझे चुना है, मेरे आधार पर ये सृष्टि खड़ी हुई है, मैं ही इसकी आधार मूर्त आत्मा हूँ। और बस यहाँ चित्र में देखते चले और ये विजुअलाइज माने अंदर के नेत्र से हम देखते चले, ये जड़ में जो बैठी हैं इनमें से एक मैं आत्मा बैठी हुई हूँ, मैं भगवान की चुनी हुई विशिष्ट रतन हूँ। और इस प्रकार से आगे चलते जाएं, ये मुख्य तना है, ये सतयुग की बात जो जो बाबा ने बताई है, उस बात को हम अंदर में बुद्धि में बस खुद ही जैसे हम किसी को समझा रहे हैं, अपने मन ही मन में उसको रिवाइज करते रहेंगे, तो एक इससे ये फायदा होगा कि बुद्धि चलनी शुरू होगी, और दूसरा वो चित्र को समझाने के लिए ना किसी को भी समझाना हमारे लिए बड़ा सहज हो जाएगा। कोई भी आएगा बस चित्र को देखते चलेंगे और चित्र के ऊपर जो चित्र वगैरह बने हुए हैं उसके ऊपर समझाना बड़ा सहज हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा, आज भी मुरली में बोला ना, अव्यक्त मुरली सुनी, बोल भी जो है ये भी एक एनर्जी है। तो इस वर्ष को किस रूप में मनाना है, आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में क्या बोला, आज जो अव्यक्त मुरली सुनी किस रूप में मनाना है, एक तो बाबा ने तीन रीति से अलग अलग बोला, एक तो मुक्ति वर्ष के रूप में, जो अंदर की कमजोरियां हैं बस उससे मुक्ति, दूसरा विजयी वर्ष के रूप में मनाना है। ये तो हम सुनते और कहते आए हैं, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार हमारी साधना क्या होनी चाहिए, ये मेरा विजयी वर्ष है, मैं विजयी आत्मा हूं, हमारा अधिकार है, खाली ये सिमरण करने से नहीं, मैं विजयी हूं बाबा। तो मन जो है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड जो अर्थचेतन मन है, उसके अंदर ये घुस जाना चाहिए, मैं विजयी आत्मा हूं, कलप पहले वाली विजयी हूँ, साधना का वर्तमान स्वरूप इस समय के अनुसार ये ही होना चाहिए। तो एक तो मुक्ति वर्ष, बस मैं सब बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, और साथ ही साथ तीसरा बाबा ने क्या बताया, मेहनत मुक्त वर्ष, किसी भी चीज में मेहनत न लगे स्वतः रीति से। अब देखो कई चीज होती है, प्रैक्टिस हो जाती है, मेहनत नहीं लगती। अब पलक झपकाने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, अपने आप ही पलक झपक रही है। आप स्कूटर साइकिल चलाते हो, अभ्यास हो गया, मन कहीं भी चल रहा है कोई भी काम में, अपने आप ही साइकिल स्कूटर कार वो चलती जा रही है, अपने आप ही भीड़ आती है, अपने आप ब्रेक लग जाता है, अपने आप वो सब स्वतः होता चलता है। लेकिन किस लिए होता है, क्योंकि उस पर हमने अभ्यास किया है, बचपन से लेकर अभ्यास करते आए हैं, इसलिए वो अपने आप होता चलता है, उसमें मेहनत नहीं लगती। तो इसी तरह बाबा जो चाहता है हमारे मेहनत न लगे, उसके लिए अभ्यास, बार बार और अभ्यास करते चले, भले बुद्धि भागे लेकिन ये अभ्यास में कमी ना आए, एक बाबा ने ये बताया। तो साधक बन करके अब इस बात के ऊपर मुझे खास अटेंशन देना है, कैसे, ये सुनते तो आए हैं ज्ञान के अनुसार ड्रामा है, लेकिन ड्रामा को देखते हुए भी ना मुझ साधक की क्या साधना होनी चाहिए वर्तमान समय के मुताबिक, जो बाबा ने कहा है, बहुत विभिन्न पार्ट देखेंगे अपने साथ साथियों के, जो और अपने पुराने भाई बहने हैं, कई बातें सोची नहीं होंगी, कई बातें कई दृश्य ऐसे आएंगे, इसीलिए बाबा ने कहा है हमारी स्थिति कैसी हो, साक्षी दृष्टा, ये सब साधन भी है कि साक्षी दृष्टा। देखो दृष्टा जब हम कहते हैं ना, तो दृष्टा इसमें भी चार चीज है, एक है दृष्टा, दृष्टा कौन है, आत्मा दृष्ट है, दूसरा ये दृष्टि है, ये आंख। तो आंख नहीं देखती हमारी, आंख के द्वारा आत्मा देखती है। दृष्टा आत्मा है, ये दृष्टि जैसे खिड़की है। अभी ये कमरे में खिड़कियां हैं, अब खिड़की कोई बाहर का दृश्य थोड़ी देख रही है, हम जाके खड़े होते हैं, देखने वाला अलग है, खिड़की तो एक साधन मात्र है, खुला हुआ है, इसलिए बाहर का दृश्य देखते हैं। एक है दृष्टा आत्मा देखने वाली, एक है दृष्टि जिसके द्वारा देखती है। खिड़की है शरीर की, खिड़की आंखें इनके द्वारा देखती है। तीसरा क्या है? तीसरा है दृश्य, जो भी चल रहा है हमारे सामने, पार्ट जिसे कहते हैं ना, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, तो वो दृश्य हम देखते चले। दूर है कहीं पर कुछ भी हो रहा है, दृश्य बरसात हो रही है मानो, देख रहे हैं। अब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो दूर से देख रहे हैं, लेकिन साक्षी दृश्य, हाँ ये हो रहा है, फलाना वो गाय जा रही है, कोई भी चीज है तो वो दृश्य। तो जब हम साक्षी होकर के दृश्य देखते हैं, दृष्टि वो कब होगा साक्षी होकर के? जब मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये संसार के दृश्य देख रही हूं, ये स्थिति रहेगी। और चौथी बात है, फिर जब इस स्थिति में होकर हम कर्म करते हैं, कोई दृश्य देखते हैं, कोई बात सुनते हैं, तो इस स्थिति में रह के तो तब ही हमारा दृष्टांत बनता है। यानी इतिहास लिखा जाता है, भक्ति मार्ग की बातें लिखी जाती हैं, उन आत्माओं की ही लिखी जाती हैं जो इस स्थिति में रह करके, दृष्टा की स्थिति में रह के कार्य करती है। एक वर्तमान साधना का स्वरूप ये ही होना चाहिए, मैं आत्मा इन कान के द्वारा सुन रही हूँ, आंखों के द्वारा देख रही हूँ। अव्यक्त साधना का स्वरूप, ब्रह्मा बाबा में भी हमने देखा, हाँ हमें ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफी सौभाग्य मिला। 1962-61 में ज्ञान में आए, तब तो मात्र 16-17 साल की आयु थी, मात्र 15-16, और तब से 1969 जब बाबा अव्यक्त हुए, तो कई बार बाबा से साकार में मिलने का सौभाग्य मिला। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो ये है कि जब बाबा अव्यक्त हुए, कौन सी तारीख को बाबा अव्यक्त हुए थे? 18 जनवरी, और कौन सा साल? 1969। तो 17 और 18 जनवरी 1969 को हम मधुबन में ही थे, बहुत दूर में थे पोस्टेड, लेकिन वहां से बाबा ने बुला लिया, और दो दिन तक बाबा की अव्यक्त साधना का स्वरूप देखने को मिला, इससे पहले भी मिला। तो बाबा कैसे व्यक्त से अव्यक्त होते चले जा रहे थे, तो उसमें जब 1961-62 में बाबा से मिले, देखा बाबा बहुत समय देते थे, बात पूछते थे, क्या हम लोग बात बताया करते थे, अपने पुरुषार्थ की बात, सेवा की बात, तपस्या की बात, कोई बात होती थी बाबा उसमें करेक्शन करते थे। एक एक बच्चे के साथ बाबा 15-20 मिनट तक भी बैठा करते थे, बताया करते थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा का अपना स्वरूप भी अव्यक्त होता जा रहा था, तो धीरे धीरे बाबा के सम्मुख जब जाते थे, बाबा को दो चार बातें ही बताते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। हम लोग कहते थे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, पूरी बात बताई नहीं, लेकिन बाबा कहते थे नहीं बच्चे जो बताई ना, अच्छा ये बतानी है ना, और पूरी बात बाबा थोड़ी शब्दों में ही समझ जाता था और उसका समाधान दे देता था। तो जैसी अपनी स्थिति होती है वैसा ही हम दूसरे की बात को कैच करते हैं। अपना रेडियो ट्रांजिस्टर या टीवी सेट बहुत अच्छा फाइन ट्यूनिंग होगी, पूरा दृश्य और सब चीज बिल्कुल अच्छी तरह पकड़ेगा। अपनी ही ट्यूनिंग अगर गड़बड़ होगी ना, तो वहां से तो जितनी बढ़िया ट्रांसमीटर हो रहा है, जितना बढ़िया कोई भी गीत है, संगीत है, बातचीत है, दृश्य है, वो अच्छा रीति से हो रहा है, लेकिन अपनी ट्यूनिंग अगर ठीक नहीं है तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से जितना जितना हम सब भी व्यक्त से अव्यक्त की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक हमें ये देखना, हमारी ट्यूनिंग ऐसी हो, हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ ऐसा हो जो बाबा ने कहा है। कौन सा है? वो सब तो है वायरलेस। आजकल ये जितने भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साधन, टीवी है, मोबाइल है, कोई ट्रांजिस्टर, टेलीफोन का, ये सब चीजें जो है वायरलेस सिस्टम है। वायर कोई नहीं है, यहां से अमेरिका भी बात हो जाती है एक सेकंड में, कहीं भी कोई वायर से कनेक्टेड नहीं है, वायरलेस है। लेकिन हमें कैसा बाबा चाहता है बनना? वॉइसलेस। वो वायरलेस है, हमारा ये साधन मन का वॉइसलेस माने निर्विकारी हो, विकार रहित हो। जितना हमारा ये वॉइसलेस निर्विकारी साधन होगा, मन में कोई विकार नहीं होंगे, उतना बाबा से हमारी ट्यूनिंग परफेक्ट होगी और समय पर बाबा की हर बात को हम कैच कर सकेंगे। ये जरूरी है क्योंकि बाबा ने बताया है कि अंत समय जब विनाश का समय होगा, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, लेकिन अगर हमारा वॉइसलेस कनेक्शन हुआ बाबा के साथ, तो समय पर हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली बस बाबा के साथ कनेक्शन है, बाबा ने टच किया, हमें लगेगा ये हमारा विचार है, ये विचार आ रहा है, हमारे कदम उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी और सेफली बिल्कुल उधर से निकल जाएंगे और ये विनाशकारी साधन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसलिए बाबा अभी यही चाहता है कि हमारी साधना का ये स्वरूप और सूक्ष्म होता जाए, महीन होता जाए, और वो तब होगा जितनी हमारी ट्यूनिंग बाबा के साथ बुद्धि योग होगी। तो ये कुछ ये साधक आत्मा को ये करना है, और ये साथ में जो साध्य शिव बाबा, क्योंकि बाबा पावर हाउस है, बाबा के साथ जितना हमारा कनेक्शन होगा उतना उतना शक्तियां हमारी आत्मा के अंदर आती जाएंगी। और कोई भी चीज का अगर स्टॉक होता है ना, तो मन में बड़ी निश्चिंतता रहती है। माताएं हैं भाई, घर में अगर स्टॉक है, गेहूं, चावल, दाल, मसाले, ये सब है, तो निश्चिंतता रहती है। चलो अगर कुछ बाहरी परिस्थितियां ऐसी आई, घर में स्टॉक है, 10-20 मेहमान भी आ गए, साल भर महीने इतने महीने कुछ चलता रहेगा, स्टॉक होता है। तो ऐसे ही बाबा ने आज भी कहा ना, शक्तियों का, गुणों का, समय रूपी, ये सारे के सारे इन शक्तियों के स्टॉक हमारे पास जमा होने चाहिए। पैसे का भी अगर बैलेंस होता है बैंक में, तो थोड़ी निश्चिंता रहती है मनुष्य को कि चलो अगर कोई इमरजेंसी आई, कोई परिस्थिति आई, बैंक से पैसा निकाल के काम हमारा पूरा हो जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इसीलिए हमारे अंदर भी शक्तियों का स्टॉक जमा होता रहे, ये हमें बीच बीच में कैसे ये चेक करते जाना है। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? मानो मेरे में समाने की शक्ति का स्टॉक कितना है, सहन करने की शक्ति का स्टॉक कितना है। ये स्टॉक होगा तभी तो समय पर हम निकाल सकेंगे, तभी तो समय पर कोई परिस्थिति आई, हमारी सहनशीलता के बाहर स्थिति होती जा रही है। लेकिन हम सफल कब होंगे? अगर ये स्टॉक होगा तो बीच बीच में रोज हम ये देखते जाएं, क्योंकि अभी मानो सहन शक्ति हम में कम है, कोई परिस्थिति आई बस हमारी सहन शक्ति का बांध टूटने वाला है, लेकिन ये रहे नहीं, मुझे सहन शक्ति का स्टॉक जमा करना है। तो पहले 10 में से 4 बार सफल होंगे, 6 बार नहीं भी हों, लेकिन अगर सफल होना ये शुरू कर देंगे और परिस्थिति है सहन शक्ति का बांध टूटने की, लेकिन नहीं अगर तोड़ा और ये स्मृति रही नहीं मुझे ये करना है, ये इसको अपनी सहनशीलता का बांध नहीं तोड़ना है, तो क्या होगा, धीरे धीरे सहन शक्ति का स्टॉक जमा होता जाएगा। और उसे पॉजिटिव रूप में कैसे ले, मानो कोई परिस्थिति है, हमारे विचार बहुत चल रहे हैं, एकदम विचारों की संख्या बहुत ज्यादा विचार चलने लगे, तो हमें इस किस रीति से ले, बार बार हम विचारों को बंद कर रहे हैं लेकिन विचार बार बार एकदम सीमा तोड़ के कोई ऐसी तरफ जा रहे हैं जो नहीं जाने चाहिए हमारी मर्यादा के अनुसार जा रहे हैं बार बार, तो इसे हम कैसे रीति से लें। मानो बाबा से रूहान करे, बाबा आपका बहुत बहुत थैंक्स, ये जो विचार आ रहा है मेरे मुझे मन में, जैसे दिया बुझने से पहले बड़ी तेजी से टिमटिमाता है, बुझने से पहले कहते हैं फिर बुझ जाता है, ऐसे ही अभी बार बार मुझे ये जो समाने की शक्ति नहीं आ रही है, ये विचार बहुत बार बार मेरे मन में बस सीमा तोड़ के बढ़ता जा रहा है, तो बाबा को उस रीति से कहे, बाबा आपका थैंक्स, ये विचार अब मुझसे 2500 वर्ष के लिए छुट्टी लेना वाला है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो ये कमजोर विचार आएंगे ही नहीं, तो इसलिए न समाने की शक्ति की जरूरत होगी, न सहन शक्ति किसी चीज की नहीं, अभी बहुत आ रही है, इसका मतलब ये दीवा बुझने वाला है, ये चीज बस बुझने वाली है, इसीलिए ये बड़ी तेजी से दीवा बुझने से पहले तेजी से टिमटिमाता है, आ रही है, इसका मतलब ये जाने वाला है, बाबा आपका बहुत थैंक्स, अब ये विचार मुझसे छुट्टी ले रहा है 2500 साल के लिए, और 2500 साल तक मुझे ये परेशान नहीं, उसमें घबराए नहीं कि क्यों आ रहा है ये विचार, मुझे तो ज्ञान में अभी 10 साल हो गए, 5 साल भी हो गए, फिर भी ये विचार बार बार आ रहा है, मेरी बुद्धि क्यों भाग रही है, नहीं, उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले सीधा, जैसा आज भी मुरली में बोला ना, व्यर्थ और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले। तो कोई भी ऐसी बात, तो ये साधना का स्वरूप होना चाहिए, समस्या के विस्तार में न जाके सीधा का सीधा उसके समाधान में अगर लग जाएंगे तो ये संस्कार बन जाएगा, फिर ये बात हमारे हमें समस्या के रूप में नहीं आएगी, वो तो आएगी, कोई भी निगेटिव है, कमजोर संकल्प है, क्योंकि काफी समय के हैं, लेकिन उसको इस रूप में लेते चले, तो ये एक साधना का स्वरूप ये हो, इससे क्या होगा, जितना हमारे मन के अंदर, मन हमारा जितना अपने कंट्रोल में आता जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारी स्थिति बन जाएगी, मन जीते जगत जीते। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन के ऊपर, इसीलिए बाबा ने भी उसे कहा है, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति हो, मन में ही तो इच्छा होती है, तो ऐसी स्थिति हो जाए कि इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए, तो जितना ये होता जाएगा उतना क्या होगा, जितना हमारे मन के ऊपर जीत होती जाएगी सूक्ष्म में, उतना बाहर के दूसरे व्यक्ति जो आएंगे, हम उनके मन की इच्छाओं को पढ़ सकेंगे और उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे, इस तरीके से हमारी प्रजा जो है ना, बहुत बहुत तेजी से बढ़ेगी। कोई भी आए, हमें याद है हम 17-18 जनवरी को यहाँ पर आए, बाबा आसाम में पोस्टेड थे, बस बाबा ने बुला लिया, और 17 और 18 जनवरी 1969 को बाबा की अव्यक्त स्थिति देखने का मौका मिला। यही स्थिति थी बाबा की। पहले तो मैंने बताया जैसे जाते थे, बाबा से बोलते थे, बाबा समाधान देते थे, लेकिन इन दो दिनों में लगभग 6-7 बार ऐसा हुआ, हम बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा को ये बात कहेंगे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने जरा सा दृष्टि दिया और देखे बाबा ने कहा अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। यानी कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। अपने मन के ऊपर, संकल्पों के ऊपर बाबा ने इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि जो भी सम्मुख आता था उसके मन के संकल्पों को तुरंत केवल पढ़ ही नहीं लेते थे, लेकिन पढ़ के उसकी उस इच्छा को भी पूर्ण कर देते थे। जैसा हम सब सुनते आए हैं भक्ति मार्ग में, बस भक्त के मन में कोई इच्छा होती थी, भगवान के सम्मुख जाता था, अपने इष्ट देव के सम्मुख उसको याद करता था और इष्ट देव दर्शन देते थे, कहते थे हाँ क्या इच्छा है, वरदान मांग लो। भक्त के मन में जो इच्छा होती थी वो इच्छा को प्रकट करता था तो इष्ट देव के या भगवान के मुंह से क्या निकलता था, एक ही अक्षर, बस तथास्तु, और भक्त की इच्छा पूर्ण हो जाती थी। ये है बहुत अपनी प्रजा का बनाने का और भक्त बनाने का साधन। हमारी स्थिति ऐसी हो कि जो भी इच्छा लेकर के आए बस हम उसकी इच्छा को पढ़ के बाबा तक पहुंचा दे, क्योंकि कराने वाला तो बाबा ही है। हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं कि हम सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, लेकिन बाबा के साथ अगर हमारा बुद्धि योग है और हम निमित्त साधन मात्र बन जाते हैं उसकी इच्छा को जैसे पहुंचाने के, बस हमारे सम्मुख आएगा और उसकी वो इच्छा पूर्ण हो जाए। बाबा की यही स्थिति थी। मुझे याद है 18 जनवरी को मधुबन में हिस्ट्री हॉल है ना, पांडव भवन में, वहां बाबा अपनी रात्रि क्लास अंतिम साकार के द्वारा करा रहे थे, हम सम्मुख बैठे हुए थे सामने। तो बस मुरली सुनते सुनते ही हमारे मन में विचार आया, क्योंकि बाहर के तो थे नहीं, 10-15-20 मधुबन वाले ही बैठे हुए थे बाहर से, तो हम ही सिर्फ आए थे। बस मन में विचार आया बाबा हमारे लिए कुछ बोले, नए थे तो बाबा कुछ बोले, कोई ऐसा वरदान दे, शक्ति दे। तो बस जैसी मन में विचार आया, देखो वो आत्मा तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की स्थिति में थी, बस जैसी मन में विचार आया बाबा तक पहुंचा, बाबा ने तुरंत ही नाम लेकर के कुछ महावाक्य उच्चार दिए। वो आज तक भी हमारे हृदय में छपे हुए हैं। और बस ये इस बात का प्रतीक है कि अंत में हमें भी ऐसी स्थिति को प्राप्त होना है कि हमारे सम्मुख, बाबा ने कहा अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो रोती हुई आत्मा आए, हमारे सम्मुख आए, हंसती हुई चली जाए, उसका हम स्वरूप बदल दें। अग्नि होती है ना, जैसे अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप बदल जाता है, ऐसी हमारी योग अग्नि ऐसी जली हुई हो कि दुखी अशांत आत्मा हमारे सम्मुख आए, मन में बहुत प्रसन्न हो, लेकिन हमारे सम्मुख आते ही बाबा हमारे द्वारा उस आत्मा को ऐसी अनुभूति कराएगा कि वो आत्मा हंसती हुई शांत स्वरूप स्थिति का की अनुभूति करती हुई चली जाएगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा। और ये तब होगा जब हमारा भी वॉल्केनिक योग, यानी जो ज्वालामुखी योग बाबा जिसे कहते हैं ना, ऐसी स्थिति का योग हमारा होगा। ये अव्यक्त साधना का वर्तमान में स्वरूप है, बाबा का ये देखा। तो एक ये बाबा की स्थिति। दूसरी बात, हमारी बाबा ये भी चाहता है हमारी अब स्वस्थिति ऐसी शक्तिशाली हो कि कोई परिस्थिति आए हम उस परिस्थिति को बदल सके। अभी क्या होता है कि कोई परिस्थिति आती है तो हमारी स्वस्थिति को बदल देती है। परिस्थिति शक्तिशाली होती है, स्वस्थिति हमारी उतनी शक्तिशाली नहीं होती, तो जो ज्यादा शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली वाले को बदल देता है। मानो हम किसी के शमशान यात्रा पर गए हैं, तो बस वैराग का वातावरण होता है, सब कुछ शांत सन्नाटा, तो बस वो स्थिति हमारे मन में भी थोड़े समय के लिए वैराग ले आती है। यानी बाहर की परिस्थिति हमारे मन की स्थिति को भी वैरागी बना देती है। इसके विपरीत कोई विवाह समारोह या कोई ऐसे समारोह में जाओ, क्लब में जाओ, कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा हो, वैसी मन की स्थिति हो जाती है। लेकिन बाबा चाहता है इसका उल्टा, कि हमारी स्वस्थिति ऐसी हो बाहर की परिस्थिति को। बाबा को हमने देखा ऐसा ही था, बाबा की उम्र काफी थी, कई बार बाबा को खांसी आती थी, हा? और खांसी आते आते कभी आंख भी गीली हो जाती थी और हमें लगता था जैसे हम सबको कि बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा जैसे ही अपनी स्वस्थिति को ना, ये परिस्थिति यानी खांसी की परिस्थिति ये आई, फिर बाबा अपनी स्वस्थिति को ऐसे तुरंत, पास में बाबा का लक्ष्मी नारायण का चित्र था, कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र, बाबा के देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है, खांसी है, तकलीफ है, और ये अभी बस नई दुनिया में जाएंगे, मैं ऐसा मिचनो कृष्ण, बस वहां तो कोई शरीर की तकलीफ नहीं होगी, कोई व्याधि नहीं, बीमारी नहीं, और बस बच्चे ऐसी स्थिति। तो बाबा अपनी उस स्वस्थिति को एमर्ज करता था और जैसे ही वो स्वस्थिति एमर्ज हुई तुरंत खांसी भाग जाती थी, फिर कंटिन्यूस फिर बाबा मुरली चलाता रहता था। तो हमें भी अभी ये हमारी साधना का स्वरूप होना चाहिए प्रैक्टिकल में, कि हम हमारे अंदर शक्तियां हैं लेकिन हम उन्हें समय पर एमर्ज नहीं कर पाते हैं, समय पर। और समय पर अगर वो कोई काम ना आई तो उसका फायदा क्या हुआ? हमारे पास मानो खांसी है, खांसी की दवाई या कोई भी चीज है, उसका क्योर है, लेकिन समय पर अगर हमने उसे यूज नहीं किया तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका भी करुण का भी है, समय पर उसको भी ये था अभिशाप की भाई तुम्हें ये शक्तियां, लेकिन समय पर तुम्हारी शक्ति काम में नहीं आएगी, ये श्रापित था जैसे वो। तो हमें अपने को देखना है, क्या मैं भी कर्ण की तरह ऐसे तो श्रापित नहीं हूं कि बस मेरे पे शक्तियों का स्टॉक है बहुत, बाबा ने शक्तियां हम सब एक एक बच्चों को दी है, लेकिन समय पर हम उसको एमर्ज कर सकें, काम में ला सकें, तब तो फायदा है। और समय पर काम में नहीं आई तो उसको वो तो धरी की धरी रह जाएगी, फायदा क्या हुआ उसका? इसलिए एक स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय ये हो। और ये कब होगा? समय पर, जैसे आपको बताया ना, चार चीजें, साधक, साध्य, साधन और साधना। तो ये चीज ना, ये साधन सूक्ष्म, ये सारे साधन हमारे पास मौजूद हैं, बस हम उस चीज को एमर्ज करें। बाबा ने भी शुरू में ना ये करा, जब बाबा ने देखा 1936 में ज्ञान में आए, बाबा ने भी अनुभव किया, क्योंकि बाबा ये घर गृहस्थी वाला था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, तो शुरू में बाबा को ये अनुभव होता था कि मेरा मन जो है टिक नहीं रहा है, बार बार भाग जा रहा है। तो बाबा ने क्या करा, मन को पत्र लिखा, उस पत्र की कॉपी हम लोगों को दी गई थी, जो बाबा ने शुरू में, एक दादा आनंद किशोर होते थे, बाबा ने तो सिंधी में लिखा, उसका हिंदी अनुवाद करके हम सब पुराने भाइयों को दी गई थी वो कॉपी। तो बाबा ने कैसे मन को एड्रेस किया, मन को पत्र लिखा बाबा ने कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है। आत्मा राजा है, मन मंत्री, बुद्धि सेनापति और संस्कार सैनिक है जैसे। तो बाबा ने मन को एड्रेस करा, हे मन, मैं राजा हूं, तू मंत्री है, लेकिन तू ज्यादा शक्तिशाली हो गया और तुमने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, तो मैं भी तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा और तू मुझे भटकाता रहा, जहां तू जाता रहा मैं तेरे पीछे जाता रहा, मैं कमजोर होता चला गया। लेकिन हे मन, बाबा फिर ज्ञान में जब आए और बाबा को जब ये अनुभूति हुई कि मैं राजा हूं, तब बाबा ने एक, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि मैं आत्मा राजा अब पुनः अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ और अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मंत्री है, तुझे मेरा हुक्म मानना है, मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगा। बाबा ने ये ऑर्डर किया मन को। ऐसे ही हम भी देखें, कभी कभी मन अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध भाग जाता है, हम ये न कहें भक्ति मार्ग की तरह क्या करें, मन बड़ा चंचल है, लेकिन नहीं, मन को ऑर्डर करें मन, और उसको ऑर्डर करने के लिए हम अपनी पहले स्वस्थिति में स्थित हो जाए। जैसे कोई है पॉलिटिशियन भी है, कोई इलेक्शन जीत गया सब उसकी बात मानेंगे, या अपनी सीट पर स्थित है, या गवर्नमेंट ऑफिसर भी, कोई भी कलेक्टर है या बड़ा ऑफिसर है, अपनी सीट पर है सब उसकी बात मानेंगे, लेकिन अगर उसका ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चला गया और अपनी सीट पर नहीं है, रिटायर हो गया कुछ भी, तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा, सीट की सब वो करते हैं। तो इसीलिए मन को यदि हम ऑर्डर करना चाहते हैं तो पहले हम अपने सम्मान में, सम्मान की सीट पर बैठ करके जो बाबा ने इतने सम्मान दिए हैं उन सम्मान को एमर्ज करें। मैं सर्वशक्तिवान बाबा की संतान हूँ, मैं कल पहले की वही विजयी आत्मा हूँ जो अब फिर विजयी बन रही हूँ। बाबा आपने मुझे कल पहले विजयी बनाया था और अब मैं मुझे फिर से आप विजयी बना रहे हो। बाबा आप वही कलप पहले वाले हो, मतलब जितने समान हैं उन समान को हम बार बार रिपीट करेंगे, यानी कि मैं समान की सीट पर स्थित होती जा रही हूँ, और तब उसके बाद फिर हम मन को ऑर्डर करें, हे मन अब मेरा मन बहुत भाग रहा है, मन अब मुझे इस समय समाने की शक्ति चाहिए, सहन की कर देगी। आप देखो तुरंत ही संकल्प सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। बस कंडीशन यही है, पहले हम अपने समानों को एमर्ज करें, उनकी सीट पर स्थित हो, उसके बाद मन को ऑर्डर करेंगे, तुरंत ही मन हमारी बात मान लेगा। तो वर्तमान समय एक पुरुषार्थ का ये, क्योंकि अभी ज्यादातर वार जो होगा ना स्थूल रीति से माया के नहीं होंगे, माया के सूक्ष्म वार मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, ऐसे संबंध के द्वारा उनके मन के ऊपर वो ज्यादा वार करेंगे। कोई भी बात होती है, खुशी भी मन में होती है, तनाव भी मन में ही आता है, तो सारी चीज की जड़ ही मन है। इसीलिए हमें ये देखते चलना है कि हमारा मन जो है हमारे इच्छा के विपरीत न जाए। बस मन को जहां मैं स्थित करना चाहूं वहां स्थित करूं, तुरंत ही मन स्थित हो जाएगा। तो ये वर्तमान जो अव्यक्त साधना का ना बाबा का एक ये भी देखा साथ साथ। और बाबा का क्या देखा, क्योंकि अब हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा का ही है ना, तो साकार से बाबा भी बिल्कुल साकारी घर गृहस्थी वाला हीरे जवाहरात का वो था, लेकिन धीरे धीरे बाबा सबसे पहले संपूर्ण और कर्मातीत बन गया। कितने साल में बन गए बाबा? 33 वर्ष में सिर्फ, 1936-37 में ज्ञान मिला और 1969 में बाबा अव्यक्त हो गया, संपूर्ण कर्मातीत बन गया फरिश्ता, सिर्फ 33 साल में। हमें 50-52 साल हो गए, और भी बहुत हैं 60-70-75-78 साल वाले, हम सभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन बाबा 33 में इसीलिए बन गया, इतने कम समय में बाबा ने इस पढ़ाई को बहुत सीरियस ले लिया। और केवल ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, ये तो हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं, और बाबा ने सीरियसली लेकर के मन को इतना पक्का करा मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, लिख लिख करके इतना पक्का कर दिया कि बाबा के सम्मुख जो भी आता था बस बाबा दृष्टि देता था, आओ बच्चे, बस ऐसे बाबा ने किया, चुंबक की तरह बाबा की वहां में खींच के चले आते थे और फिर एकदम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाते थे। फिर बाबा ऐसे थोड़ा थपथपा के जैसे कि फिर से ला करके ना देह में टोली खिताता था, हाल चाल पूछता था, तो लेकिन दृष्टि देते ही बाबा उड़ा देता था, हम अपने को चेक करें, क्या मेरी भी ऐसी स्थिति है, किसी को देह भान में न ला करके उनको ऐसी अव्यक्त स्थिति तक पहुंचाने में मैं आत्मा, और ये तब होगा जब हमारा अपना पुरुषार्थ इसमें किया हुआ होगा। तो सारा का सारा पुरुषार्थ ही अपने ऊपर है, हमारा जितना साधना का स्वरूप सूक्ष्म होता जाएगा, अव्यक्त होता जाएगा, हम दूसरों को भी अव्यक्त कर सकेंगे। और बाबा ने कहा वैसे तो बच्चों के सामने पेपर अनेक आएंगे, लेकिन वर्तमान समय दो पेपर विशेष, एक है अपने शरीर का बीमारी के रूप का पेपर और दूसरा है परिवार का पेपर। तो परिवार का पेपर कैसे आएगा कि बस अरे ये इतना 40 साल पुराना, 50 साल, इसमें भी ऐसी बात, इसमें भी क्रोध, इसके अंदर भी ये कमजोरी, बस वो चीज हमें जैसे कि ऊंचा नहीं उठने देगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा है एक तो किसी को भी हम एक काल की दृष्टि से न देखें, तीनों कालों की दृष्टि से देखो। वर्तमान में उसका ये पार्ट है, लेकिन ये वो ही आत्मा है जो भगवान की चुनी हुई है। किसी भी जितने यहाँ बैठे हैं, भारत, विदेश में, दुनिया में जितने भी बीके हैं, भगवान ने उन्हें चुना है। और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा के सिलेक्शन को हम चुनौती न दें, अरे बाबा आपने ये इसे चुना और इसके अंदर तो ये कमजोरी नहीं। वर्तमान समय उसका ये पार्ट है, लेकिन ये पार्ट के बाद वो आत्मा अपने आप ही, बस जो बाबा उसको जिस स्थिति में देखना चाहता है उस स्थिति में वो आत्मा पहुंच जाएगी। तो केवल एक तो वर्तमान काल की दृष्टि से न देखें तीनों कालों की, और दूसरा इस भगवान ने इसे चुना है। तो बस भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता, तो हम भी उसे उसी निगाह से देखें, ये भगवान की चुनी आत्मा है। और दूसरा पेपर अपने शरीर का पेपर, कि शरीर के अंदर बहुत व्याधि आएंगी, युवक युवान युवतियां ये ना सोचें कि हम तो भी अभी जवान है, हमारे शरीर में क्या व्याधि होगी। भले इस जन्म का शरीर भले उतना वृद्ध नहीं हो, लेकिन आत्मा तो अनेक जन्मों की, मतलब बहुत पुरानी है, बहुत विकर्म किए हुए हैं, इस कारण से वो आत्मा का हिसाब किताब तो इस शरीर के द्वारा ही चुकतू होना है। इसलिए उसके लिए पास होने का ये तरीका है जो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिस हमेशा करते थे, जब चाहें हम शरीर से न्यारे हो जाएं और जब चाहें हम शरीर में आकर के पार्ट हो जाएं। और ये बाबा का देखते थे, बाबा से मिलने जब पार्टी आती थी, जो टाइम दिया होता था बस पार्टी आती थी, ब्राह्मणी आती थी, बाबा ये पार्टी लाए हैं, बस बाबा बैठा है, आंख भी खुली हुई है। जब ब्राह्मणी एक दो बार बोलती थी बाबा बाबा, बाबा को थोड़ा जर्क सा लगता था, है बच्ची आ गए। अच्छा, तो देह से न्यारा होने का अभ्यास और देह में आने का अभ्यास, ये हम बच्चों का जितना पक्का होता जाएगा, तो जितनी भी शारीरिक व्याधियां होंगी, शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, वो हमारे आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। दुख हो, अशांति हो, कुछ भी हो, नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी जरूरत हुई हम देह से न्यारे हो गए। फिर देह के अंदर जितना भी, डॉक्टर भी जब देह से न्यारा कर देता है, क्लोरोफॉर्म दे देता है, एनेस्थीसिया दे देता है, तो शरीर को काटता है, खून निकलता है, कुछ महसूस होता है नहीं। तो ये अव्यक्त विधि है, शरीर से जैसे न्यारा हुए शरीर में जो कुछ भी व्याधि होगी उसका अनुभव नहीं होगा। तो देह में आने का अभ्यास और देह से न्यारा होने का अभ्यास, वर्तमान समय इस अभ्यास की आवश्यकता है। तो बाबा का ये सब देखा और इसीलिए बाबा इतने कम समय में अव्यक्त हो गए। हम सबको भी बस अब ये ही करना है, ये सब देखते हुए जो जो बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है, बाबा ने जो किया हम भी उसी स्थिति को में स्थित हो करके और अब अपनी साधना को कंप्लीट करें, और जो बाबा हम बच्चों से चाहता है वो ही हम बाबा को मन के दिखाएं। ओम शांति, ओम शांति।
Thank you. तेरे बिन।